तीन भुवन में सार वीतराग बेज्ञान ता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रयोग समाधि के। खेराला में पांचवीं ढाल में बारह भावनाओं की चर्चा चल रही थी, जिसमें निर्जरा भावना तक अपनी बात हो चुकी थी। अब लोक भावना की चर्चा है। देखो कितना अंतर है भूदेव दास जी की भावना में और दौलत राम जी की भावना में। इसमें किन हू न करो न धरे को, सड़ द्रव्य मई न हरे को, सो लोक माही बिन समता, दुख सह जीव नित भ्रमता। कि इस संसार को, इस दुनिया को किसी ने बनाया नहीं है। किन हू न करो, किसी ने बनाया नहीं है। न धरे को, कोई धारण नहीं किए है। एक छह द्रव्यों का बना हुआ है, और न हरे को, इसका कोई हरण नहीं कर सकता। लोक में ऐसी मान्यता है कि इस जगत को किसी ने बनाया है, कोई इसकी रक्षा करता है और कोई समय पर इसका नाश कर देता है। नाश करने वाले भी देवता, बनाने वाले भी देवता और रक्षा करने वाले भी देवता है ना। लेकिन जैन दर्शन में ऐसी मान्यता नहीं है कि संसार को किसी ने बनाया। ये स्वनिर्मित है, अकृत्रिम है, ये अनादि अनंत है। कोई इसे धारण किए है इसलिए रह रहा है, ये बात नहीं है। और कभी इसका कोई नाश कर सकेगा, ये बात भी नहीं है। ये तो छह द्रव्यमय है, तो इस लोक का ये स्वरूप है। इसमें ये बात आई ना। अब उसमें देखिए, चौदह राज उतंग नव लोक पुरुष संथान, दामे जीव अनादिते भरमत है बिन्या। वहां कह रहे हैं कि चौदह राज ऊंचा है, पुरुषाकार है, पर इसमें जीव अनादिकाल से परिभ्रमण कर रहा है। क्या अंतर है दोनों में, क्या क्या एकता है। लोक माने जो लोकाकाश का नक्शा आपने देखा होगा ना, तो उन्होंने तो उस नक्शे की बात की, भूगोल की बात की। क्या चौदह राज उतंगना, चौदह राज ऊंचा है नीचे से ऊपर तक, और पुरुषाकार है। और इसमें कहा किसी ने बनाया नहीं है, कोई नष्ट नहीं कर सकता, कोई रक्षा नहीं करता है, छह द्रव्यों का बना हुआ है। एक भूगोल की बात करते हैं, दूसरे न्याय शास्त्र की बात करते हैं। क्योंकि न्याय शास्त्र में जगत का कोई कर्ता नहीं है, ऐसा ईश्वर इस जगत में नहीं है। जैन धर्म नहीं मानता है कि जिसने इस दुनिया को बनाया हो, जो इसको पालता हो अथवा जो इसका नाश कर सके, ये न्याय शास्त्र की बात है। और छह द्रव्य से बना हुआ है, तो ये उस लोक का स्वरूप बताते हैं। अब वो भूगोल की बात करते हैं, लेकिन अंतिम दोनों की पंक्तियों को देखो कि उसमें लिखा है चौदह राज उतंग नव लोक पुरुष संथान, उत्तामे जीव अनादिते भरमत है दिन ज्ञान। इसमें ये जीव घूम रहा है आत्मज्ञान के बिना। असली बात तो ये कहना है उन्हें कि दुनिया के लक्ष्य से क्या लेना देना है। और ऐसे इसमें कि तो लोक माही बिन समता, दुख सहे जीव नित भ्रमता। ऐसे लोक में ये जीव वहां लिखा बिना बिन ज्ञान, यहां लिखा बिन समता, समता के बिना घूम रहा है। ये बात दोनों में एक सी है। बारह भावना का जो उद्देश्य है कि तुम्हें ये बताना है कि क्यों दुखी हो, क्यों घूम रहे हो, तो वो उन दोनों में एक, दोनों एक मत हो गए। दोनों उसमें एक मत हो गए। देखो इसमें लिखा सो लोक, लोक की परिभाषा क्या है, तो अपन नक्शा देख के बनाने लगते हैं। वो कहते हैं लोक माने किन्हीं ने बनाया, लोक माने इच्छा द्रवों का जो बना हुआ इच्छा द्रवों का जो समूह है उसका नाम विश्व है ना, ये लोग है। एक जगह तो ऐसा लिखा है राजवार्तिक में कि जिसमें झलकते लोक सब वह आत्मा ही लोक है, जिसमें छह द्रव झलके हैं वो आत्मा लोक है। इन बारह भावनाओं में जो छड़ाला की खासकर जो अंतिम पंक्ति है वो बहुत जोरदार है। जब भी आसर की बात करते हैं तो कहते हैं ऐसा आसर को छोड़ देना चाहिए, समर की बात करते हैं तो कहते हैं ऐसे समर को ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि जब तक उसका हम निष्कर्ष नहीं निकालें तब तक उस कथन का क्या मतलब है। देखो लोग लोक और संसार का एक अर्थ समझते हैं, लोग माने संसार, संसार माने लोक, लेकिन बारह भावनाओं में संसार है तीसरी भावना और लोक है ये नौवीं भावना, नौवीं है ना, दसवीं भावना है, समझे ना। अब ये दो भावनाएं जब अलग अलग लिखी हैं तो दोनों का एक अर्थ कैसे हो सकता है। तो वहां संसार भावना में का क्या अर्थ है, संसार का क्या अर्थ है। अपने कहते हैं कि ये जीव संसार में भटक रहा है, ऐसा यहां भी लिख रहे हैं लोक में भटक रहा है, उदय राज उतंगनम वाले लोक में भटक रहा है क्यों। तो वास्तव में मैंने बहुत पहले उसमें लिखा था कि ये जीव संसार में नहीं है बल्कि संसार जीव में है। फिर समझना, यह जीव संसार में नहीं है संसार जीव में है। क्यों? कि संसार तो उस विकारी पर्याय का नाम है, मोहिरागदेशु जो विकारी पर्याय है ना उसका नाम संसार है। तो पर्याय द्रव्य में होती है कि द्रव्य पर्याय में होता है, समझ गया ना। तो वहां तो आत्मा की जो विकारी अवस्था है अनादिकाल से लेके जो अभी तक जब तक की सम्मा दर्शन नहीं हुआ अथवा जब तक मोक्ष नहीं हुआ तो संसारी अवस्था है वो दुख दुख रूप ही है, इस बात का वर्णन उसमें है। संसार तेरे में नहीं, संसार तेरे भाव, संसार में तू है नहीं, संसार तेरे भाव में, क्षण एक क्षण में विनाश को प्राप्त होगा संसार। कब आ जाए यदि तू स्वभाव में, यदि तू अपने स्वभाव में आ जाए तो संसार का एक क्षण में नाश हो जाएगा, और नाश हो जाएगा लेकिन उसकी कहीं राख भी पड़ी नहीं मिलेगी। क्या मतलब, कोई किताब कोई भी चीज होती ना यदि उसे जला दो उसे गला दो तो वो भले ही नष्ट हो जाए लेकिन उसका कुछ ना कुछ राख पड़ी रहती है जलाने देने के बाद में। तो संसार का नाश करेंगे तो इसकी कुछ राख वाख तो कहीं पड़ी रहेगी कि नहीं, समझे ना। राख तक नहीं बचेगी ऐसा ये संसार का अभाव हो जाता है। और लोग ये कहते हैं कि छद्रव्य का समूह जो लोक है उसका तू स्वरूप समझ, छद्रव्य का समुदाय है। अभी लोक भावना देखिए कार्तिक की अनुपेक्षा में देखिए तो बहुत बड़ा एरिया इस लोक भावना ने घेरा है उसमें। क्यों बोलो राजेश कैसे, सैकड़ों श्लोक लिखे हैं इसमें, मेरे ख्याल से 189 ऐसे कुछ हैं छंद लिखे हैं। क्या लिखा होगा इसमें, अरे भाई जब इस तीन लोग की बात करते हैं तो तुम पूरा श्लोक सार भर दो ना उसमें, तीन लोग का विस्तार से वर्णन कर दो। क्यों तो पूरा कर्णान योग जो खासकर भूगोल संबंधी है वो सारा इसमें रखा जा सकता है, क्योंकि इसका चिंतन करना, बारह भावना चिंतन का नाम है। तो लोक के स्वरूप का चिंतन करेगा तो क्या चिंतन करेगा, अथवा इनकी तरफ से लेना है तो छद्रव्यमय है तो छद्रव्य विश्व किसे कहते हैं, छद्रव्य के समूह को लोक कहते हैं, विश्व कहते हैं तो छद्रव्य द्वीप किसे कहते हैं, द्वीप किसे कहते हैं, पूरा द्रव्यानियों को भर दो। क्यों, और फिर करता धरता नहीं है कोई, तो पूरा न्याय शास्त्र भर दो। आप जानते हैं दिव्यानी योग के दो भेद हैं, खासे तो तीन, एक सिद्धांत, एक न्याय और एक अध्यात्म। ये तीनों दिव्यानी योग में आते हैं। तो इस सारा दिव्यानी योग और करुणानी योग का भूगोल वाला हिस्सा, इसके चिंतमन में इसका विस्तार किया जा सकता है। इतनी गुंजाइश इसमें है, आप लोग एक भावना के कैसे करते रहेंगे तो उसके डिटेल में चले जाओ। लेकिन तुम कितने ही डिटेल में जाओ, लेकिन अंत में ये बात नहीं डाली कि सो लोक माही बिन संता, दुख सबे नीचे विभिन्नता, अथवा राज तुम लोक रोशन, या में जीव अनादित है भरमत है बिन ज्ञान, तो वो लोक भावना पूरी नहीं होगी। तुम जब तक उसने हृदय उपाधेय बना नहीं बताए, क्या प्रयोजन है? तुम्हें नक्शा लेके काय को बैठ गए हो, हमें इसे क्या लेना देना है? क्यों इच्छा द्रव्यों के वर्णन से हमें क्या लेना देना है? लेकिन ये हमें समझना है कि इन इच्छा द्रव्यों के सही ज्ञान के बिना, समता भाव के बिना, हम इस संसार में अनंत काल से तीन लोक में भटक रहे हैं और तब तक अनंत काल तक भटकते रहेंगे। अब इसमें जो उन्होंने बताया ना, अंतिम गृहीवक की लो हद, आप जानते हैं कि अभी तीन लोक का नक्शा कभी देखा होगा तो बीच में मध्य लोक है, नीचे सात नरक हैं, एक से एक के नीचे, एक के नीचे। यहां ऊपर 16 स्वर्ग हैं, तो 16 स्वर्गों में दो दो के जोड़े हैं, सौधर्म ईशान, ऐसे आठ हिस्सों में 16 स्वर्ग हैं। उसके ऊपर नव गृहीवक हैं, उसके ऊपर नव अंगदिश हैं, उसके ऊपर पांच अनुत्तर हैं। तो ये जीव सम्यक दर्शन के बिना नौवें गृहीवक तक चला गया। तो समझना है क्या कहना चाहता हूं ये बात कहकर के। और कल बताया था कि सम्यक दृष्टि अनुवृत्ति भी हो तो 16 स्वर्ग के ऊपर नहीं जाता। तो वो नवमी गिरी लोग चला गया। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि बिना आत्मज्ञान के, बिना सम्यक दर्शन के जो 22 चारित्र पाला, वो भी इस सम्यक दृष्टि से ज्यादा पुण्य कमा सकता है। ऐसा अर्थ हुआ कि पुण्य का ठेका भी अकेले जैनियों का थोड़ी है, सम्यक दृष्टियों का थोड़ी है। शास्त्र में लिखा है कि परमहंस नामा परमति आगे सहस्रार्ध नहीं गति। जो परमहंस नाम के जो अजैन साधु होते हैं ना, वे 12वें स्वर्ग तक जाते हैं। तो पुण्य का ठेका सम्यक दृष्टियों का नहीं है। ये बात अलग है कि सम्यक दृष्टियों को उत्कृष्ट जाति का पुण्य बनता है, अपेक्षा के ज्यादा बनता है, ख्याल में है ना, वो बात अलग है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ही कमा पाएंगे। कहने का मतलब है कि मनुष्य भव उस पुण्य कमाने के लिए नहीं मिला है, समझे ना, वो उस चीज के बिना मिला है कि वहां तक जाकर के ही। इसमें लिखा ना देखो, अंतिम गृहीवक लोक की हद पायो अनंत विरिया पद, पर सम्यक ज्ञान न लाधो दुर्लभ निज में मुनि साधे। मुनिराज उसकी साधना अपने में करते हैं। इस गाथा को लोग ऐसा कहते हैं कि जैसे मुनि की निंदा की बात कर रहे हैं। क्या निंदा की बात है? हम तो ये कह रहे कि उस सम्यक ज्ञान को मुनि साधते हैं। ऊपर भी मुनि लिखा, अशोक लिखा, क्या लिखा, अंतिम गृहीवक की लो हद, तो वहां तक कौन पायो अनंत विरिया पद, वो भी मुनि लिंग के बिना नहीं पहुंचते हैं। पर नीचे भी लिखा कि उसकी साधना मुनिराज करते हैं। अभी नंदा की बात कहां आ गई? मुनि शब्द का प्रयोग तो ऊपर है ही नहीं, वो तो इनडायरेक्ट निकला है, क्योंकि वो मुनिराज जाते हैं उसके आगे और कोई नहीं जाता है ना। और नीचे तो साफ लिखा है कि मुनिराज उसकी साधना करते हैं, मुनिराज उसको जान लेते हैं, सम्यक दृष्टि भी जान लेते हैं, वृत्ति भी जान लेते हैं। लेकिन हम मुनि की मुख्यता से बात की। जे भाव मोहते न्यारे जगे ज्ञान बितादि के सारे सुधर में जब दिए धारे। जो भाव मोहित है न्यारे, जो मोह से भाव जुड़े हैं, मोहिनीकरण से माने दर्शन मोह से माने मिथ्यात्व से रहित और चारित्र मोह से रहित, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र हैं। देखा दीर्घ ज्ञान वृताधिक सारे, ये यदि दर्शन मोह और चारित्र मोह से रहित हों माने सम्यक हों तो इनका नाम धर्म है। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानी धर्मम धर्मेश्वरा विदु है कि नहीं है, वह धर्म है। और इसको जब जीव धारण करता है तो अचल सुख जो सिद्ध सला का सुख है, मोक्ष का सुख है, उसको वो प्राप्त करता है। इस तरह बारह भावनाओं की चर्चा समाप्त हुई और अंत में वो कहते हैं सो धर्म मुनि निकार धरिए तिन की कर तू ते उतरिए। अभी कहते हैं ऐसा जो धर्म है वो मुनिराज धारण करते हैं मुख्यता के रूप से, जो मुनियों की बात करते हैं ना। अब इसमें दो बातें हैं जरा खतरनाक हैं। ऊपर बोलेगा तिनकी करतूत उचरिए, लोग में करतूत काय को बोलते हैं, ये तो इनकी करतूतें जानते नहीं हो। लोग में खोटे काम को पाप कार्य को करतूत बोलते हैं, नहीं बोलते ना है? और यहाँ के मुनिराजों की करतूत, तो मुनिराजों की करतूती का मतलब के खोटे काम है, क्योंकि ये वर्णन करने वाले हैं तो मुनिराजों के सच्चे धर्म का वर्णन करने वाले हैं कि उनकी करतूती उनने क्या किया वो हम आपको बताने वाले हैं, उसके लिए करतूती शब्द का प्रयोग किया। ये वास्तव में जितना हल्का शब्द है नहीं, जितना हल्का शब्द इसे मान लिया गया है। क्या होता है भाषा विज्ञान की दृष्टि से कि एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय का, एक देश दूसरे देश से, और कई कारणों से शब्दों का अर्थ बदल जाता है। जैसे मैं बताऊं आपको, अपने शास्त्रों में मुनिराजों को नग्न दिगंबर लिखा ना तो प्राकृत में नंगा बोलते उसे, नंगा नग्गा, नग्गो ही मोक्ष मग्गो आता ना। और अपने मुनिराज केस रुंच करते हैं तो उसे उन्हें लुंचा माने केस लॉन्च करने वाले, वे पापों का नाश करते हैं इसलिए उन्हें पाखंडी, पाप का जो नाश करें वे पाखंडी। अब देखिए नंगा लुच्चा पाखंडी इनका अर्थ आज क्या होता है? इस शास्त्रों में नग्न दिगंबर मुनिराजों के लिए शब्द प्रयुक्त हैं, परमात्म प्रकाश में पढ़ के देखो और शास्त्रों में देखो। लेकिन एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति जब घृणा करती है तो उन्हीं शब्दों का प्रयोग वो गंदे अर्थ में करने लगती है। क्या जैसे कि अपन पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान तो आप कहां लैटिन जा रहे हो, फिर कहां जा रहे हो पाकिस्तान। अब पाक माने तो पवित्र होता है ना, लेकिन हमने उन पाकिस्तान के प्रति जो घृणा है उसकी वजह से हमने अब गंदे से गंदे स्थान को कह दिया पाकिस्तान जा रहे। ऐसा बहुत हुआ। देखिए ये दक्षिण भारत में है, ये पिल्लई होते ना, ठाण पिल्लई फलान ऐसे नाम होते ना, तो वहां पर पिल्लई माने होता सुपुत्र माने अच्छा बढ़िया राजकुमार, जैसे अपने बोलते हैं ना। पिल्लई शब्द बहुत पवित्र है, मतलब अब उनसे घृणा के कारण उत्तर भारत वालों ने कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहना शुरू किया। एक दूसरे की संस्कृति के प्रति जो घृणा है उसकी वजह से इन शब्दों का अर्थ बदल जाता है। अब देखिए कि यहाँ वो संस्कृति इतनी ज्यादा जबरदस्त है और हम बहुत अल्प मत में हैं, क्यों कि वो इन शब्दों का इनमें नंगा लुच्चा पाखंडी गंदे अर्थ में करने लग गया ना, तो धीरे धीरे हम पे भी असर पड़ा कि हम भी उसका गंदे अर्थ स्वीकार करने लगे। और अभी हमारे भगवान मुनिराज को कोई ये कहे तो निर्णय बनने को तैयार हो जाए। उन्होंने कहा क्या कल ने, तो ये जो करतूती शब्द है समझ लो कि दौलत राम जी पौने 200 वर्ष पहले हुए, तो पौने 200 वर्ष पहले अच्छे अर्थ में प्रयुक्त होता था, है ना। नहीं तो वे काहे को लिखते, भाई मुनिराज के साथ में इस करतूत शब्द का प्रयोग क्यों करते, और आज उसका आज इतना खराब हो गया है कि उनका जो कर्तव्य है वो जो बढ़िया काम करते हैं उनके कार्यों की चर्चा हम आरंभ करते हैं। तो एक तो ये शब्द है। दूसरी बात जो मैंने कहा, दो बातें हैं ना, ताको सुनिए भव प्राणी अपनी अनुभूति पिछानी। हे भव्य जीवो, अपनी अनुभूति को पहचान कर अपनी अनुभूति को जानने के लिए अब उसका वर्णन हम करते हैं मुनिराजों का अंतरंग बहिरंग स्वरूप कैसा होता है जिससे वो मोक्ष जाते हैं। देखो जैन दर्शन में मुनि बिना किसी को मोक्ष नहीं है। ये छठवीं ढाल में मोक्ष जाने की बात करने वाले हैं, इसलिए वो मुनि धर्म नहीं है। इसलिए जो आदमी ऐसा मानता है कि ये मुनि को नहीं माने तो फिर हम इसका मतलब हम मोक्ष को नहीं मानते, मुनि को नहीं माने इसका अर्थ हम कुंद कुंद को नहीं मानते, इसका अर्थ हम अमृतचंद को नहीं मानते, इसका अर्थ हम संबंध भद्र को नहीं मानते, इसका अर्थ हम गौतम स्वामी को नहीं मानते। और जब महावीर ने दीक्षा ली थी तभी मुनि बने थे ना, इसका मतलब हम उनको नहीं मानते। इसलिए नहीं मानने की बात है ही नहीं। वस्तुतः बात ऐसी है कि जो शास्त्रों में मुनि धर्म का वर्णन है तो जब वो वर्णन पढ़ते हैं ख्याल में आए ना, तो कुछ लोगों को सीधा लगता है, कुछ लोगों को उल्टा लगता है। मैं एक सही घटना आपको सुनाता हूं। जब भगवान महावीर का धर्म चक्र निकला था ना, ये गुजरात से भी धर्म चक्र निकला था, उसमें 3 महीने तक हम सारी यात्रा में घूमे थे। तो एक भजन हम गाया करते थे, कौन ते मुनि में हमारे उर बसे, भूदरदास जी की है ना, ते मुनि मेरे उर बसे तारण तरण जिहाज हो। अब उसमें मुनिराज का बहुत सुंदर वर्णन है, ग्रीष्म ऋतु में पर्वत के पास रहते हैं, वहां रहते हैं, शेद ऋतु में नदी के किनारे, है ना, बहुत बहुत सुंदर वर्णन मुनिराजों का है। तो सारे देश में ऐसा अर्थ लगाने लगे कि देखो ये तो मुनियों के इतने भगत हैं, इतनी भक्ति कर रहे, विभोर हो जाते हैं, नाचते हैं मुनियों की भक्ति में, तो उसका असर अच्छा होने लगा। अच्छा होने लगा तो जिन लोगों को ये बात पसंद नहीं थी कि इन लोगों को दुनिया पसंद करे, क्या विमल जी, उन लोगों ने क्या किया कि ये स्तुति इसलिए गाते हैं कि इस स्तुति के माध्यम से जनता को बताते हैं कि सच्चे मुनिराज तो ऐसे होते हैं। उसने कहा वनवासी वनवासी ते मुनि वन में रहे, ऐसा है ना छंद आता है ना, तो कहीं दुनिया को बता रहे कि मुनिराज तो जंगल में रहते हैं, मुनिराज तो जंगल, ऐसा ये बार बार याद दिलाकर जो नगर में रह रहे मुनिराज सच्चे नहीं है ये इसका ध्यान करा रहे। ऐसा कह कह के वो आत्मा का ध्यान करते हैं, परिग्रह नहीं रखते हैं, तिल तो समाप्त परिग्रह नहीं रखते हैं, ख्याल नहीं ना, आत्म ध्यान में लीन रहते हैं, दुनिया के चक्करवाद में नहीं पड़ते हैं। तो ये हमारी बुराई दुनिया को बताने के लिए ये गीत गाते हैं। बोली अब मुनिराज की भक्ति करे तो चक्कर, अब छेड़ाला में भी यही दिक्कत आने वाली है। इसमें मुनिराज का वर्णन है, ख्याल में है ना। अब वो वर्णन जो इसमें है वो पंक्ति पंक्ति हम आपको सुनाने वाले हैं। अब जिनकी बुद्धि उल्टी होगी वो ये कहेंगे देखो ये बात इसलिए सुना रहे क्यों, कि जिनकी प्रवृत्तियां इसके अनुसार नहीं है वो ये चाहते हैं कि ये चर्चा शास्त्र में ही बंद रह जाए, जनता को मालूम नहीं पड़े, है ना, अन्यथा लोग हमें इस जानकर इस कसौटी पर परखने लगेंगे तो वो ये बात नापसंद करते हैं। अब इसलिए मैं इसमें ज्यादा खोलूंगा नहीं, अब आप लोगों को जरा समझने में अकल लगानी पड़ेगी, क्योंकि मैं व्यर्थ में ही किसी राग देश में नहीं पढ़ना चाहता, किसी भलाई बुराई में भी नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन सच्चे मुनि का क्या स्वरूप है और 125 बरस पहले इस छेड़ाला में लिखा है। जो लोग ये समझते हैं कि हमारे विरुद्ध ये बात है तो दौलत राम जी तो उन्हें जानते भी नहीं थे क्यों, फिर 125 बरस पहले हो गए तब इन्होंने ये छेड़ाला लिखी थी। मालूम कब लिखी थी, इसके अंत में लिखा है देखो, एक नव बसु एक वर्ष की तीज सुखल बैसाख, एक माने एक, बसु माने 8, नव माने 9 और एक माने 1891 अंका नाम वाम तो गति, अंकों को उल्टा गिनना पड़ता है, अक्षरों में लिखे हो तो उल्टा गिनो, मन है ना, एक माने एक, बसु माने आ तो 1800 हो गए, फिर नंबर और 91 में 1891 में अभी कितना है 2063 है ना, तो 1200 वर्ष लगभग हो गए कि नहीं हो गए, तब की ये लिखी किताब है। तो तब तो हमको कोई किसी से राग देश था नहीं, और भाग्य से उस समय इस देश में कहीं भी नहीं जरूरत नहीं, चलो जरूरत नहीं कर देंगे तब, हाँ चल में ना, तब इस देश में भाग्य से इस एरिए में एक भी मुनिराज नहीं थी जिससे उनका कोई बैर विरोध हो। ये तो मुनिराज का स्वरूप उन्होंने शास्त्रों में से पढ़कर लिखा है, ख्याल में है ना। देखो सत्य काय जीव नहनते सब विधि दरब हिंसा तरी, ये इसमें चार महावृत आ गए और एक पंक्ति और पढ़ो दूसरे छंद की तो पांचों महावृत आ जाएंगे, है ना। इस सत्य काय जीव न हनन ते सब विधि दरब हिंसा तरी, के छह काय के जीवों की हिंसा वे मन वचन काया से नहीं करते हैं, अनुमोदना भी नहीं करते हैं, समझे ना। अब हम ये कहें कि छह काय के जीवों की हिंसा नहीं करते हैं तो अपन अष्टमी चतुर्दशी के दिन हरी सब्जी नहीं खाते हैं ना, क्यों? क्योंकि साहब उसमें उस पेड़ को उसको उसमें जीव होंगे उसकी हिंसा हुई। अब जो ऐसी प्रवृत्तियों में लग जाएं कि जंगल के जंगल कटवा दे, पहाड़ी को तीरथ बनाना है तो पूरा का पूरे पहाड़ी को करवा के साफ कर दें, ख्याल में आया ना। तो मन से वचन काय से कृत काय से अनुमोदना से कि हम कहां कर रहे हैं तुम कहां कर रहे हैं, ये बात तो सही है, लेकिन क्या ये सेठ जी जाकर के जमीन खोदते हैं, ये भी ऑर्डर ही देते हैं क्या, इंजीनियर भी ऑर्डर ही देता है दूसरे बनाते हैं, यदि हमारा उसमें इन्वॉल्वमेंट है किसी भी तरीके से तो हम भी उसके अपने कृत काय अनुमोदना का एक सा पाप लगता है ना। तो छह प्रकार के जीवों की हिंसा ना हो, सब विधि दरब है, सब प्रकार से दृढ़ हिंसा को उन्होंने छोड़ दिया है। रागादि भाव निवारते हिंसा न भावित अवतरी, और रागादि भाव छोड़ दिए हैं तीन, अनंतानबंदी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान संबंधी, और संजुन संबंधी जो रह गए हैं वो तो बहुत सूक्ष्म होते हैं, वो रागादि ऐसे देखने में नहीं आते हैं। देखो मुनिराज ब्रह्मचारी है क्या नहीं, लेकिन संतुलन जो रोग है और उनके स्त्री भेद पुरुष भेद तो 8वें 9वें गुण स्थान तक रहता है, लेकिन वो मौजूद है ना, लेकिन देखने में तो नहीं आता ना, समझे ना। यानी वो इतना मंद होता है कि वो अंदर में करुणा नियोग के हिसाब से है, फिर भी इतना तीव्र नहीं है कि बाहर की क्रिया किसी को देखने में आ जाए। पंचमात्री बिल्कुल शांत नर्म दिगंबर, कोई भी विकृति जिनके जीवन में नहीं है, ख्याल नहीं ना। तो ऐसे ये कहते हैं कि जिनके रागादि भाव सिर्फ सूक्ष्म लोभ वाला राग रह गया है, जो कि वो 10वें गुण स्थान में तक जाता है तो 8वें 9वें तक जाता है, संतुलन का रह गया राग देश को मन माया रूप, तो इस तरह से उनका जीवन अहिंसक होता है। जिनके न लेस मृषा न जल तृण हु बिना दियोग हैं, रंच मात्र भी जो झूठ नहीं बोलते हैं, पहले तो क्या कहा था स्थूल झूठ नहीं बोलते हैं, यहाँ का रंच मात्र भी झूठ नहीं बोलते हैं, अनुव्रतों में क्या कहा था कि जल और मिट्टी वो बिना दिए मांगे किसी के दिए ले लेते हैं बिना पूछे, बाकी कुछ नहीं लेते हैं, और ये मुनिराज जल और मिट्टी भी नहीं लेते हैं, समझे ना। इसका मतलब कमंडल के पानी भी کوئی دے گا تو لیں گے، خیال میں ہے نا. اور مانگنے کی بھی طریقہ ان کا ایسا نہیں کہ ہر ایک سے کہتے ہیں بھیا میرے کمانڈر میں پانی بھر دے، بھوجن بھی جاتے ہیں نا ہار کے لیے، تو ایسا طریقہ نہیں ہے کہ کسی میرے بھوجن کی ویوستھا کر دے، وہ تو نکلیں گے ایسے. تو یہی ان کا یہ ہے کہ بھائی ہم ہار کو نکلے ہیں، اور لوگ نبدا بھکتی پوروک انہیں نمسکار کر کے پڑھائیں گے، اور انہیں 32 انترائے تال کا 40 دوش تال کر کے بھوجن ملے گا تو لیں گے، اور نہیں تو نہیں لیں گے. اور اسی وقت وہی شراوک ان کا کمنڈل میں بھی پرانا پانی نکال کے نیا پانی شدھ پراشک بھر دے گا. وہ بھی وہ اس کا نام مانگنا ہے، کیونکہ ایسا نکلے نا اس بات کا پرتیک ہے نا کہ مجھے یہ چاہیے. لیکن وہ منہ سے کسی سے مانگے کہ میرا بھوجن کرا دو ایسا نہیں ہوتا ہے نا. دیکھو ہم اور 8-10 شہر میں سیل تھے، اب 18,000 پرکار کے سیلوں کو دھان کر کے وہ چیتن برہم میں لین ہو گئے ہیں. اب 18,000 پرکار کے گھر میں بہت ہیں، من سے، بدن سے، کایا سے، کرت سے، انبودنا سے، آپ سمجھ گئے نا. ابھی منتر تنتر بتائیں اس کو، یہ بتائیں کہ تیرے کو یہ منتر کا جاپ کرنا تو بال بچہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. 18,000 پرکار کے سیل کے پالن میں یہ سب سمبھو ہے. اور انتر چتردس بھید باہر سنگ دستا تین تلیں، انترنگ کے 14 اور بہرنگ کے 14-10، ایسے 24 پریگرہ سے وہ رہت ہوتے ہیں. دیکھو بہرنگ پریگرہ کو تو ہم جانتے ہیں، ہے نا، بستراجی وغیرہ ہے نا. انترنگ پریگرہ کیا ہے جانتے ہیں؟ دیکھو میں آپ نہیں جانتے ہو نہیں جانتے ہو چھوڑو، میں آپ سے نہیں پوچھوں گا، لیکن میں بتاؤں گا تو آپ اپنے من میں جواب دینا کہ میں غلط بول رہا ہوں کہ صحیح. یعنی میں آپ کی پریکشا لینے کے لیے غلط نہیں بول سکتا ہوں، سوچنا، پھر میں پوچھوں گا بعد میں. مطلب آپ کو منہ سے نہیں بولنا ہے، سمجھے نا. اب میں کہتا ہوں پہلا پریکشا ہے متھیا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کوئی کہہ رہے نہیں ہے، کوئی کہہ رہے ٹھیک ہے. سنو 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 پورا. دوسرا پریشرہ ہے کرودھ، پریگرہ ہے کرودھ، ٹھیک ہے. تیسرا ہے مان، چوتھا ہے مایا، پانچواں ہے لوبھ. کیا میں بدھو مت بناؤ، یہ تو کسائیں ہیں. کرودھ، مان، مایا، لوبھ تو کسائیں ہیں. پھر چھٹواں ہے ہاس، یہ تو نو کسائیں ہیں. ارے بھائی یہی کسائیں اور نو کسائیں، چار پرکار کی کسائیں، نو پرکار کی نو کسائیں اور مچھات، یہی 14 انترنگ پریگرہ ہیں. اگر سمجھنا نو کسائیں میں کیا کیا ہے، ہاس، رتی، ارتی، بھے، شوک، جگپسا، شریبیر، پرشبیر، نپنسک بیر، یہ آپ نے پڑھی نا. اب ہاس ایک پریگرہ ہے، کوئی مانتا ہے کہ ہاس بھی پریگرہ ہے؟ جب آپ کو ہنسی آتی ہے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہم پاپ کر رہے ہیں، کہ کسائی کر رہے ہیں، کہ ہم پریگرہ، پریگرہ تو پاپ ہے نا، لگتا ہے کسی کو. اس کا مطلب اسے نہیں مانتے ہیں پریگرہ. کیوں؟ اچھے اچھے پریگرہ تیاگیوں کو کھلکھلا کر ہنستے کہیں بھی دیکھا جا سکتا ہے. خیر وہ کوئی بات نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ منی راج کو ہنسی بھی نہیں آتی ہے، کیونکہ وہ اتنی مند ہو گئی، سنڈلن رہ گئی ہے کہ باہر دکھائی نہیں دے گی. بولیے، کبھی سوچا آپ نے؟ یہ سوچا کہ صاحب ہم میں کیا دوست ہے، ہم میں کیا دوست ہے؟ یہ ہنس رہے کھلکھلا کر کے. تو ایک ہاس نام کی پریگرہ ہے، ایک ہاس نام کی کسائے ہے جو منی راجوں کی، کیونکہ 24 پریگرہ کے بھی تیاگی ہیں. سنو، ایک ڈرنا یہ بھی پریگرہ ہے. ڈر لگتا ہے شیر کا جنگل میں، جس کا بیماری کا حصہ سمجھ لیجیے، یہ ڈر بھی ایک پریگرہ نام کا پاپ ہے. ایک آپ نے بھی کبھی سوچا؟ شوق، جو ہمیں شوق شوق ہوتا ہے نا، تو وہ بھی ایک پریگرہ ہے. سمجھے نا، یعنی ہمیں ابھی ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ پریگرہ ہیں، تو ان کا تیاگ ہم کیوں کریں گے. ہمارے جے پور میں بہت سے لوگ آتے ہیں क्योंकि आप जानते हैं ना कि जयपुर सारी दुनिया के मंदिरों में जितने भगवान विराजमान हैं ये सब हमारे जयपुर के ही बने हुए हैं, है ना, जयपुर में ही बनते हैं। और भाग्य की बात ये है कि हम उन्हें पास करते हैं, आप जाके देख के आते हैं कि पंडित जरा आप देख लो पास कर दो तो हम ले जाए, होता क्या नहीं होता बोलिए। हमने चेतन भगवान बनाने का भी कारखाना खोला है, पर भाग्य की बात है कि हम उन्हें भी हमें ही पास करते हैं। ये तुम्हारे राकेश को अशोक को हमको हमने पास किया है सब, क्यों तो हमारे पास आते हैं खासकर गुजरात के लोग, तो वो कहते हैं पंडित जी हमको एक बहुत अच्छी भगवान दिला दो, एकदम हंसमुख। गुजरातियों को न मालूम हंसमुख क्यों पसंद है, हर तीन आदमियों में से एक आदमी का नाम हंसमुख होगा। मैं उनसे कहता हूं कि यदि हंसमुख होंगे तो भगवान नहीं होंगे, और भगवान होंगे तो हंसमुख नहीं होंगे। क्यों? कि हंसना तो कसाय है, हंसना तो एक परिग्रह है, और हमारे भगवान तो संपूर्ण कसायों से और संपूर्ण परिग्रहों से रहते हैं। हम तो परिग्रह क्या, रुपया पैसा हो गए ना, कि सामान वामान कपड़ा लपड़ा पहने हुए तो हम उन्हें परिग्रह मानते हैं। क्यों? बसें चला रहे हों, टीवी रखे हों, मोबाइल रखे हों तो हम उन्हें परिग्रह मानते हैं, और हमें थोड़ी आलोचना भी करते हैं, हम तो उसकी भी नहीं करते हैं, आप लोग करते हो। क्यों? हम करके क्या करें कि हम तो ये मानते हैं कि हंसना और डरना ये भी परिग्रह है। भाई साहब समझ गए ना, अब इसकी क्या बात करें कि ये भी होगा तो सत्य मणिराज को ये भी नहीं होता, क्या होना चाहिए। तो अब हम ये स्वरूप बता रहे हैं कि बताइए कि हम किसी की आलोचना कर रहे हैं, हम तो किसी की हम एक शब्द नहीं नाम आज तक हमारी प्रतिज्ञा है हम किसी की भी व्यक्तिगत आलोचना नहीं करते। और आप कहो तो स्वरूप भी नहीं बताएं, लेकिन हम छेड़ाला वाले लिख गए तो वो स्वरूप बताना हमें जरूरी है कि नहीं, कि 24 परिग्रह से वो रहे थे, लिखा कि नहीं लिखा, अंतर चतुर्दश भेद बाहर संग दस दाते हैं पहले, तो 24 परिग्रह के नाम बताएं आपको कि नहीं, और उसमें हास और भय भी एक परिग्रह है, ये बोलिए हमें बताएं समझाएं कि नहीं समझाएं। इसकी वजह से कोई कहे कि हम हंसते हैं तो हमें परिग्रह बता रहे हैं, तो हम क्या करें, ख्याल में आई ना। अब वो बाहर की जो परिग्रह सारी दुनिया को दिखाई देता है, अब उसकी तो हम बात ही क्या करें, लेकिन ये अंतरंग परिग्रह को हम परिग्रह ही नहीं मानते। हमारे दुख की बात तो ये है, अंतर चतुर्दश बाई दसदा संग। देखो मैंने एक दिनेंद्र भगवान की स्थिति लिखी है, 24 भगवान की, उसका नाम दिनेंद्र वंदना है, और अपनी जो किताब है ना दिनेंद्र अर्चना उसमें छपी है। उसमें मैंने क्या किया आप लोगों के समझने के लिए कि 24 भगवान और यहां 24 परिग्रह, तो आदिनाथ को पहले परिग्रह से रहत बताया, अजितनाथ को दूसरे परिग्रह से रहत बताया, संभव नाथ को तीसरे परिग्रह से रहत, और ये भी लिखा कि 24 भगवान 24 परिग्रह से रहते हैं, क्या ये भी लिखा, लेकिन एक एक को एक एक पे घटित किया, क्योंकि इस बहाने यदि तुमको वो याद हो जाए तो 24 परिग्रह के नाम भी याद हो जाए, ख्याल है ना आपकी समझ में, कि हमको 24 परिग्रह, हमको ये कल्पना भी नहीं है कि हम कोई पाप कर रहे हैं। मैं बोल उनको जाने दो, अपना अपने समझेंगे तो अपना कल्याण होगा, जो नहीं समझेगा उसका नहीं होगा, हम दूसरे की बात क्यों करें। लेकिन मैं हम कहें हम छाती पे हाथ रखकर हम सोचें कि हमें जब हंसी आती है तो हमें ऐसा लगता है कोई हमने पाप किया है, क्यों इसके फल में हमें नरक में जाना पड़ सकता है। हम कोई डर के भागे तो हमें ऐसा लगता है कोई हमने पाप किया है, लेकिन परिग्रह नाम का पाप किया है। हम तो अगर पैसा जोड़े बंगले इतना बड़ा ये, इसको ही परिग्रह मानते हैं, क्यों ये बाहर की विभूति ये कारें हैं ये हैं इनको परिग्रह मानते हैं, और बस हमने ये कम कर दिया, हमने बस 10 लाख रुपए रखे ज्यादा नहीं रखे, हम समझते हम परिग्रह के त्यागी हो गए। हंसने के बारे में हम कभी सोचते ही नहीं है, भय के बारे में भी हम अपने तो सोचते हैं ना दूसरे सोचते, क्यों तो ये भी परिग्रह हैं, ये बात इसमें आई हुई है। देखो अब आपको जो मेरी बात पर भरोसा नहीं हो तो तत्वा सूत्र में और ग्रंथों में मैं पढ़ के देख लेना, ये 24 परिग्रहों के नाम हैं कि नहीं है, ये मेरे घर की बात तो नहीं है, इसमें तो नाम नहीं गिना है ना, अकेला इतना लिख दिया कि अंतरंग 14 और बहिरंग 10 है ना, मेरे धर्म के 10 लक्षण किताब है ना, उसमें मैंने परिग्रह ना आकिंचन धर्म उसमें ये सब बातें लिखी हैं। अब परमाद तद चौकर महीलख समित ईरिया ते चले, प्रमाद को छोकर चार हाथ जमीन देखकर आगे चलते हैं। अभी क्या है, चार हाथ जमीन को देखकर, देखो अपना दिगंबर मुनिराज तो सब नग्न दिगंबर हैं और पैदल ही चलते हैं, लेकिन हम महामेरिका वगैरह जाते हैं ना तो हम बहुत सीतांबर साधु पहुंच गए अपने को मुनिराज कहते हैं, और अब वो कार में बैठते हैं प्लेन में बैठते हैं और चलते हैं सब, और हम मिलते हैं तो उनसे बातचीत करते हैं, तो वो कहते देखो पंडित जी पहले के जमाने में घोड़ा और ये बैल इनकी सवारी होती थी तो उन पशुओं को तकलीफ होती थी इसलिए सवारी का त्याग होता था, सुना अब तो ये कारें हैं तो पेट्रोल से चलती हैं, हवाई जहाज ट्रेन से चलता है पेट्रोल से, इसमें थोड़ी कुछ अब सवारी का त्याग करने की क्या जरूरत है, ये बिल्कुल मेरे से उन्होंने बोले सब ने आपको मैं बोल रहा ये जान रहा हूँ कि ऐसे कैसे भी बन रहे हैं सब लोग जानेंगे ये सब समझता हूँ मैं तब भी बोल रहा हूँ, उनने कहा नाम भी बता सकता हूँ लेकिन बताने से क्या फायदा है, तो मैंने कहा महाराज ऐसा नहीं है तो क्या क्या है, तो मैंने कहा कि इस सवारी का त्याग इसलिए नहीं करते थे घोड़े को और हाथी को तकलीफ होती है, इसलिए करते थे कि मुनिराज ईरिया समिति पूर्वक चलते हैं और चार हाथ आगे की जमीन देखकर चलते हैं, ठीक है ना, तो वो घोड़ा जिस पर बैठेंगे वो चार हाथ जमीन देख के भी चलेगा, हाथी जिस पर बैठे हैं वो ईरिया समिति पूर्वक नहीं चलेगा, अब जो जिस पर बैठे हैं अब वो ईरिया समिति पूर्वक नहीं चले तो इनकी ईरिया समिति कहां रही है, ईरिया समिति तभी पल सकती है जब अपन पैदल चले तो हम चार हाथ जमीन आगे देख के चल सकते हैं, क्यों अब देखिए कि मैं आपसे कहता हूं कि मुनिराज एक गांव से दूसरे गांव को बिहार करते हैं, अब उनके पीछे हजारों आदमी जाएंगे पुण्यशाली हैं और जो भगत हैं उन्हें जाना चाहिए जाते हैं नहीं, तो फिर मुनिराज उनसे ये नहीं कहेंगे कि आओ और ना ये कहेंगे कि लौट के जाओ वापस, तो चले जाएंगे जो जब कोई लौट ना हो चले जाओ, कोई 2 मील चले कोई 1 मील चले कोई लौट जाओ, ऐसे भैया अब बहुत हो गया अब तुम लोग जाओ अच्छी तरह रहना कि महाराज फिर पधारना आप जो ऐसा कुछ नहीं, क्यों ऐसा क्यों नहीं, क्योंकि आप लोग आए हो तो ईरिया समिति पूर्वक नहीं आए हो, महाराज तो ईरिया समिति पूर्वक चल रहे चार हाथ जमीन देख के, और महाराज कहेंगे हाँ चलो तुम अच्छा जमीन बना के लाओ, तो इतने जो जीव ऊपर को मुंह करके चलेंगे और उनके पैर के नीचे आगे जो जीव मरेंगे उसका जिम्मेवार कौन हो गया, इसलिए वो किसी से ये नहीं कहेंगे कि तुम मेरा स्वागत जुलूस से करो कि मेरे साथ भेजने के लिए 1600 आदमी चलो, लोग जाएंगे अपनी भक्ति से ख्याल में आए ना, और बेगम वापिस जाओ इसका अर्थ है कि यहां तक तुम्हारी मर्जी से आए हैं, तुम चाहते थे कि यहां तक आवे, तो वो कहते हमें कोई लेने ही देना नहीं है, दुनिया जो कुछ करे करे हमें नहीं मत, हम तो अपनी गति से जा रहे हैं अपनी गति से हम रुकेंगे, तुम कौन पीछे आ रहा कौन नहीं आ रहा उनकी वो जाने, क्यों क्योंकि उनकी इसमें ईरिया समिति भंग होती है, तुम जाओ भैया जल्दी जाओ गाड़ी से चले जाओ कार ले जाओ, तो फिर वो कार ले जाएगा तो गाड़ी ईरिया समिति पूर्वक चलेगी, चार हाथ आगे देख के चलेगी कार, कि कार चलाने वाला तो 100 गज आगे देखेगा नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, सामने कौन दिखता है ना, इतनी तेज चाल से जो चलती है वो उतनी ज्यादा आगे देखना पड़ता है ना उसे है? तो वो उसकी अनुमोदना भी नहीं करेंगे, किसी से आओ किसी से जाओ ये भी नहीं कहेंगे, कब आए आया करे तुम क्यों नहीं आते हो, कुछ नहीं, आए हैं नमस्कार किया है धर्म वृद्धि दे दी, कब गए कब आए उन्हें कोई लेना देना नहीं है। तब उनकी ईरिया समिति पलेगी, अकेले हम चार हाथ जमीन देख के चल गए तो नहीं है, क्योंकि हम कृत कायत अनुमोदना और मन वचन काय से उसके त्यागी हैं। एक एक चीज पे आप विचार तो करो है? अपने यहां एक वृत्त होता है कि हम हिंदुस्तान के बाहर नहीं जाएंगे, कल बताए थे ना, पहले हम इस गांव के बाहर नहीं जाएंगे एक दिन। तो वो कहते हैं कि यदि को इशारा करके वहां से बाहर की सीमा के बाहर से किसी को बुलाओ तो तुम्हारा वृत्त भंग हो गया, तुम नहीं जाओ और किसी को भेजो बच्चे को कि चला उधर चला जा तो तुम्हारा वृत्त भंग हो गया। शास्त्र में लिखा है पढ़ना, अरे वहां चिट्ठी नहीं ला सकते तुम, चिट्ठी पता लिखोगे उसके बाहर जाएगी चिट्ठी नहीं, समझ गया। इशारा करना मन से वचन से काय से वहां के बारे में कुछ नहीं, उसका नाम त्याग है, इसके अतिचार है। अकेले हमारे हमने चार कदम देख के चल दिए उतने से थोड़ी काम हो गया। हमारा मन वचन काय और कृत काय तनोजना, कृत माने करना और कारित माने कराना, तो कारित में आ गया ना, क्यों भैया तुमने बहुत अच्छा किया, जल्दी चलेगा जल्दी लौट के ले आ, ये काम कर दिया जल्दी बहुत अच्छा किया, तो ये अनुमोदना नहीं भाई। अब देखिए जहां ऐसी अहिंसा की बात है, अब ये कितनी बारीक बात है, ये शास्त्र में है और कहां चार्ज इतना बड़ा, समझ गया ना आपकी मैंने, इसकी हम अनुमोदना कर रहे हैं, लाखों आदमियों का मेला हो रहा है उसकी अनुमोदना कर रहे हैं, ये करो ये बनाओ ये तोड़ो ये मंदिर ये बनाओ, ये तरह से आप ग्रस्त के। मेरे एक विद्यार्थी हैं, नाम नहीं बताता हूँ, सच्ची घटना बताता हूँ आपको, बहुत मार्मिक बात है कि उन एक मंदिर बनाया उन्होंने बहुत बड़ा 102 फुट ऊंची सुरई बनाई, उस सुरई बन रही थी तो मैं गया उस गाँव में तो मंदिर देखने के लिए, तो दादा ऊपर चलो दादा ऊपर चलो दादा, मैंने कहा भैया मैं बीमार आदमी हूँ हार्ट का, मैं ऊपर नहीं चढ़ सकता जीना, तो दो आदमियों को ला करके मुझे ऐसा उठा करके ले गए और उठा जा करके उस ऊपर दिखाए, देखो यहाँ से ललितपुर तक दिखता है, यहाँ से इतने मील दिखता है, यहाँ तक ये दिखता है, सब बताया, इतने दूर से सुरई दिखेगी, ये होगा वो होगा। मैंने कहा बेटा एक बात कहूँ तुम बुरा ना मानो, तो मैंने अपने विद्यार्थी से कहा, किसी दूसरे से मैं नहीं कहना चाहता हूँ, अपने माथे पर मत लेना, इसलिए नाम बताना पड़ता है क्या कि कोई दूसरा अपने माथे पर नहीं ले ले मुफ्त में ना बिगड़ने लगे। मैंने कहा बेटा यदि तुमने ब्रह्मचर्य व्रत नहीं लिया होता, शादी की होती, तो तुम जो बाप दादों का मकान है ना ये दो कमरे का, इसमें ही सारी जिंदगी बिता देते, क्या सो और सोचते तो बुढ़ापे में जाके ये सोचते कि दो कमरे का मकान बाल बच्चों के बना के लिए दे जा सकूं तो अच्छी बात है, एक एक पैसा जोड़ जोड़ के और दो कमरे का मकान उन्हें बना के दे के जाते, इससे ज्यादा तुम्हारे दिमाग में कल्पना भी नहीं होती। अब तुम ब्रह्मचारी क्या हो गए, तुम्हें 200 कमरे कम पड़ते हैं, तुम्हें मंदिर की सुरई पे खड़े हो, कारीगरों से दिख रहे हो, उन्हें पैसा दे रहे हो, उन्हें कर रहे हो, ये कृतकायत अनुमोदना सब है ना, क्या क्या है क्या है नहीं? तुमने ब्रह्मचर्य काय के लिए लिया, अरे शादी की होती 2 बच्चों को पालने की चिंता होती, अब तुमको 1000 बच्चों को पालने की चिंता होगी, गांव गांव में मंदिर बनाने की चिंता होगी, आत्मा का उद्धार तो बहुत दूर रहा, तीर्थों का मंदिरों का इनका उद्धार करने की तुम्हारे दिमाग में आ गई है। दादा क्या करूं क्या करूं, मैंने कहा भैया अब ये तो बन ही गया, इसे तो पूरी पारनी पड़ेगी, लेकिन अब भविष्य में यहां प्रतिज्ञा करो मेरे सामने कि अब इस द्वारा कोई और ऐसा कोई प्रोजेक्ट अपने माथे पर नहीं लूंगा। क्यों, अब आप समझ लीजिए मेरी मान्यता, एक सामान्य ब्रह्मचारी के लिए जो ब्रह्मचर्य व्रत लिया हो, समझ गए ना, उसके बारे में मेरा सोचना ऐसा है। मेरे पिताजी सारी जिंदगी मेरे से कहते रहे कि बेटा किराए के मकान में रह लेना, कि मकान बनाना मत, और यदि बहुत पैसा तुम्हारे पास हो जाए तो बना बनाया खरीद लेना, एक खुद बनाना नहीं। तो मैंने कहा क्यों, वो पापा अपने मन का नक्शा नहीं होता, उसमें खुद बनाओ तो मन का नक्शा बना सकते हैं ना, अरे क्या करना है, जिंदगी के 2 दिन काटना है, کہ کیسے نقشہ صحیح کیا فرق پڑتا ہے, لیکن اس میں کتنی ہنسا ہوتی ہے, پرتھوی کا کھنن وغیرہ یہ سوچو. تو ایک سادھارن گرست جو ہمارے پتا جی زیادہ ودوان نہیں تھے دے, اور ہم کو یہ بات کہتے تھے, ہمارے تو وہ سنسکار پڑے ہیں اور ہمارے دماغ میں یہ بڑے بڑے پروجیکٹ دھرم ہیں, یہ کیسے ہمارے دماغ میں گھسے, اور ہماری تکلیف تو یہ ہے بچپن سے سنا یہ پڑھا, ماں باپ سے سنا, شاستروں میں پڑھا, اور ابھی بھی 24 گھنٹے اس ساس پڑھنے کے علاوہ کوئی دوسرا ہم کام نہیں کرتے ہیں. 8 برس کی عمر سے ابھی 71 برس ہو گئے, دوسرا کوئی کام نہیں کیا, ساس پڑھنا لکھنا اور کم سے کم 4-6 گھنٹے تو روزانہ ہوتا ہی ہوتا ہے, اسے کم کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے, خیال نہ ہی نا. اب ہمارا درباگ یہ ہے کہ ہم نے یہ ساس کیوں پڑھ لیے, نہیں پڑھے ہوتے تو ساری دنیا سے ہمارا حساب کتاب بہت آسانی سے بیٹھ جاتا. کیا خیال میں آیا, ابھی ہم ایسے آیوگ ہو گئے اس دنیا کے کہ کسی کے ساتھ ہمارا حساب ہی نہیں بیٹھ سکتا ہے. ابھی کیا کریں, یہ پڑھیں, اس کا پاٹھ کریں روزانہ, تو ابھی کیا سوچیں کیا کریں. دیکھو انتر چتر پرماد تج چوکر مہی لکھ سمتی ایریا تیں چلیں. اب 4 ہاتھ زمین, 4 ہاتھ زمین کیوں, 8 ہاتھ کیوں نہیں, ذرا سننا میری بات. ایسے جیب بھی تو ہو سکتے ہیں جو 4 ہاتھ سے دکھائی نہیں دیں, کیوں ہو تو باریک باریک ہوتے کہ نہیں ہوتے, تو کہتے کیا کریں. تو ابھی آنکھ ہمارے درباگ سے یہ 4 ہاتھ اوپر ہیں زمین سے, 4 ہاتھ اوپر آنکھیں ہیں, تو ہم کیا کریں. اب نیچے ہم دیکھیں تو ایسا اینگل بنائیں گے تو وہ 4 قدم 4 ہاتھ ہی بنے گا, اس سے کم کا ہم دیکھ ہی نہیں سکتے. اب جو ہوگا سو ہوگا, ہم کیا کریں, خیال میں ہے نا. تو وہ 4 ہاتھ زمینیں دور ایسا ایسا مو کر کے نہیں چلیں, ادھر ادھر کو نہیں دیکھیں, چلتے ہوئے بات نہیں کریں, کیونکہ وہ ایک ایک جیو جنتو کو دیکھ کر کے یہ بات کریں, ہے نا. پھر آگے دیکھو اس میں لکھا ہے پرماد تج چوکر مہی لگ جمج ایریا تیں چلیں, جگ سہت کر سب اہت کر سدھ سکھد سب سنسے ہریں, برہم روگ ہر جن کے بچن مکھ چندر تیں امرت جھریں. دیکھو جگ کا ہت کرنے والے بچن بولیں, سنسار کا کلیان کیسے ہوگا, کسی کا بھی اہت نہ ہو ایسے بچن بولیں, سرتی سکھد کان میں جاتے ہی بہت آنند آ جائے, کسی کو پیڑا نہیں ہو, گالی گپتا دیں گے تو پیڑا ہوگی کہ نہیں ہوگی بولیے, سرتی سکھد اور سب سنسے کو دور کرنے والے ہوں اور برہم روگ کو دور کرنے والے ہوں, ان کے مکھ کمل سے ہمیشہ نکلیں گے تو ایسے ہی بچن نکلتے ہیں, اس کا نام ہے بھاشا سمجھ. خیال ہے نا. تو اس طریقے سے یہ جو منی راجوں کے سروپ کا ورنن ہے یہ نشچے کا نہیں ہے, یہ سب ویوہار کا ہے, ہم سب جانتے ہیں. تو یہ جو ہم بتائیں جگت کو نا تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جگت سمجھ جائے گا نا تو ہمارے کو اس دشٹی سے دیکھنے لگے گا. اب وہ ان کو چاہتے نہیں کہ دشٹی سے دیکھیں, اس لیے نہ رہتے نہ بجے نہ بانس, نہ رہے بانسری کیوں, نہ رہے بانس نہ بجے بانسری, اس لیے یہ سوادھیائے کا ہی ورودھ کرنے, پڑھنے پڑھانے کا ہی ورودھ کرنے لگے, باقی کی بات کر کے لیں.